श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 10। दिव्य बुद्धि प्राप्त कैसे होती है? जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। रुकिए, एक सवाल है आपसे, क्या वाकई आप इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? सोचिए जरा। जब किसी को प्रभु की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है तो क्या वह यूं ही जाने दिया जाता है? अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम शक्ति का संदेश है जो आपको कुछ कहना चाहती है। हम तो बस एक जरिया हैं, असली संदेशवाहक तो वही हैं। तो बताइए, क्या आप इस अनमोल अवसर को अधूरा छोड़ना चाहेंगे या अंत तक साथ चलेंगे? पिछले श्लोक में हमने जाना कि सच्चे भक्त निरंतर प्रभु का चिंतन करते हैं और आपस में उनके गुणों की चर्चा करते हैं। उनका जीवन प्रभु प्रेम से पूर्ण होता है, वे हृदय से जुड़ जाते हैं। श्लोक तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोग त येन मामुप्यान्ति ते। अर्थ, जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं मैं उन्हें वह बुद्धियोग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। व्याख्या, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि केवल भक्ति ही नहीं बल्कि भक्तों के हृदय की भावना देखकर वह स्वयं उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। यह ज्ञान हमें सत्य की ओर ले जाता है और अंततः प्रभु से एकत्व की ओर। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजक शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णो भव भैहरं सर्व लोकैक नाथम्। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पदक्रमोपनिष्ते गायन्ति यम सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यः योगिनो यस्यान्तः न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चानूर मर्दनम् देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्।
प्रीतिपूर्वक निरंतर भजने का फल। श्लोक 10। तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगंत येन मामुप्यान्ति ते। उच्चारण की विधि, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगम् तम येन माम उप्यान्ति ते दस। शब्दार्थ, तेषाम अर्थात उन, सततयुक्तानाम अर्थात निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए, और प्रीतिपूर्वकम् अर्थात प्रेमपूर्वक, भजताम अर्थात भजने वाले भक्तों को मैं, तम अर्थात वह, बुद्धियोगम अर्थात तत्वज्ञान रूप योग, ददामी अर्थात देता हूँ, येन अर्थात जिससे, ते अर्थात वे, माम अर्थात मुझको ही, उप्यांति अर्थात प्राप्त होते हैं। अर्थ, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। दस। व्याख्या, भगवन्निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्वज्ञान चाहते हैं, तथा न और ही कुछ चाहते हैं। दो न पारमेष्ठ्यन न महेंद्र धिष्णन न सार्वभौमन न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवन व मयर पितात्मेच्छति मद्विनान्यत। श्री मद्भा 011। 14। स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। उनका तो एक ही काम है, हरदम भगवान में लगे रहना। भगवान में लगे रहने के सिवाय उनके लिए और कोई काम ही नहीं है। अब सारा का सारा काम, सारी जिम्मेवारी भगवान की ही है, अर्थात उन भक्तों से जो कुछ कराना है, उनको जो कुछ देना है आदि सब काम भगवान का ही रह जाता है। इसलिए भगवान यहाँ दो श्लोकों में उन भक्तों को समता और तत्व ज्ञान देने की बात कह रहे हैं। तेषां सतत युक्तानाम नवे श्लोक के अनुसार जो भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए तथा भगवान के नाम गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही प्रेम करते हैं, ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्तों के लिए यहाँ सतत युक्तानाम पद आया है। भजता प्रीति पूर्वकम, वे भक्त न ज्ञान चाहते हैं न वैराग्य। जब वे पारमार्थिक ज्ञान, वैराग्य आदि भी नहीं चाहते, तो फिर सांसारिक भोग तथा अष्ट सिद्धि और नवनिधि चाह ही कैसे सकते हैं? उनकी दृष्टि इन वस्तुओं की तरफ जाती ही नहीं। उनके हृदय में सिद्धि आदि का कोई आदर नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। वे तो केवल भगवान को अपना मानते हुए प्रेम पूर्वक स्वाभाविक ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। उनका भजन, भक्ति यही है कि हरदम भगवान में लगे रहना है। भगवान की प्रीति में वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्न में भी भगवान के सिवाय अन्य किसी की इच्छा जागृत नहीं होती। ददामि बुद्धियोगंतम, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के संयोग वियोग से अंतःकरण में कोई हलचल न हो, अर्थात संसार के पदार्थ मिले या न मिले, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो या निंदा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या न रहे आदि तरह तरह की और एक दूसरे से विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियां आने पर भी उनमें एक रूप सम रह सके, ऐसा बुद्धियोग अर्थात समता मैं उन भक्तों को देता हूं। ददामि का तात्पर्य है कि वे बुद्धियोग को अपना नहीं मानते, प्रत्युत भगवान का दिया हुआ ही मानते हैं। इसलिए बुद्धियोग को लेकर उनको अपने में कोई विशेषता नहीं मालूम देती। येन मैं उनको वह बुद्धियोग देता हूं जिस बुद्धियोग से वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मामुप्यांति ते, जब वे भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हो गए हैं और भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान में ही प्रेम करते हैं, तो उनके लिए अब भगवान को प्राप्त होना क्या बाकी रहा, जिससे कि भगवान को यह कहना पड़ रहा है कि वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे को प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त अपने में जो कमी मानते हैं, वह कमी उनमें नहीं रहती, अर्थात उन्हें पूर्णता का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव, जब तक रागद्वेष विषमता है तब तक संसार ही दिखता है, भगवान नहीं दिखते, भगवान द्वंद्वातीत हैं। जब तक रागद्वेष रूप द्वंद्व रहता है तब तक दो चीजें दिखती हैं, एक चीज नहीं दिखती। जब रागद्वेष मिट जाते हैं तब एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता। तात्पर्य है कि रागद्वेष मिटने पर अर्थात समता आने पर सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को समता देते हैं। समता ही बुद्धियोग अर्थात कर्मयोग है, समत्वम योग उच्यते गीता 2:48। गीता में कर्मयोग को बुद्धियोग नाम से कहा गया है, जैसे दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगा धनंजय 2:49, बुद्धियोग मुपाश्रित्य मच्चित्त सत्तम भव 18:57। बुद्धियोग प्राप्त होने पर भक्त दूसरे के दुख से दुखी होकर उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। जो चिंतन भजन करते हैं वह नकली कृत्रिम होता है और जो स्वतः होता है वह असली होता है। किया जाने वाला चिंतन निरंतर नहीं होता, पर होने वाला चिंतन श्वास की तरह निरंतर होता है, उसमें अंतर नहीं पड़ता। सतत युक्तानाम, शरीर में प्रियता आसक्ति होने से भगवान का चिंतन करना पड़ता है और शरीर का चिंतन स्वतः होता है, परंतु भगवान में प्रियता अपनापन होने से भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत स्वतः होता है और छूटता भी नहीं। इसलिए यहां प्रेम पूर्वक भजन करने की बात आई है। भजता प्रीतिपूर्वकम।
वन रियल लाइफ प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन फ्रॉम टुडेज श्लोक। समस्या, मैं बहुत मेहनत करता हूं पर सही दिशा नहीं मिलती, मैं क्या करूं? समाधान, श्लोक से आज का श्लोक यही सिखाता है, अगर हम प्रेम और श्रद्धा से भगवान की भक्ति करते हैं तो वो खुद हमें दिशा देते हैं। यह मार्गदर्शन बाहरी नहीं होता, भीतर से आता है, अंतःप्रेरणा के रूप में। आज का प्रश्न। प्रश्न: श्री कृष्ण के अनुसार भक्त को कौन सी चीज दी जाती है जिससे वह प्रभु को प्राप्त करता है? अ. शक्ति, बी. ज्ञान, सी. बुद्धियोग, डी. भक्ति। सही उत्तर सी. बुद्धियोग। सीख: केवल किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, जब भक्त पूरे प्रेम और निष्ठा से भगवान का स्मरण करता है तो स्वयं भगवान उसे बुद्धियोग देते हैं जिससे वह सच्चे मार्ग को पहचान सके। आज की विशेष पेड बुक प्रमोशन स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस। अगर आप गीता को सुनना चाहते हैं और वो भी अपनी पसंदीदा भाषा में, तो यह पुस्तक आपके लिए है। परिवार के हर सदस्य के लिए उपयुक्त। सुने, समझें और प्रभु से जुड़े। लिंक https://mzn.to/4jjcoy। कल जानेंगे कि जब भक्तों का अंधकार बढ़ता है तो भगवान स्वयं कैसे उनके भीतर प्रकाश करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि भगवान खुद कैसे हमारे मन के भीतर दीप जलाते हैं? हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए।